कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, बस खिड़की से आती चांदनी और टेबल लैंप की हल्की रोशनी जो दीवारों पर फीके साए बना रही थी। दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे हुए थे, लेकिन बीच में जैसे अनकहे शब्दों और खामोशी की एक बड़ी दीवार खड़ी थी। रैना ने धीरे से करवट ली और अखिल की ओर मुड़कर फुसफुसाई, अखिल सुनो। अखिल ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें छत पर टिकी थीं, लेकिन मन में बवंडर चल रहा था। रैना ने फिर हिम्मत जुटाई, तुम क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? गौरव मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जब वो कहता है कि मैं उसकी पार्टी में आऊं तो मैं उसे मना नहीं कर पाती। अगर मैं मना कर दूं तो उसे बुरा लगता है, और मैं नहीं चाहती कि वो सोचे कि मैं बदल गई हूं। अखिल ने धीरे से सिर मोड़ा। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारी चमक रही थी। तो फिर ठीक है रैना, आज से तुम सिर्फ उसकी ही बात मानना। मेरी बात मानने की तुम्हें ज़रूरत ही क्या है? वैसे भी तुम मेरी तो सुनती नहीं हो, जो तुम्हारे मन में आता है वही करती हो। रैना सन रह गई। उसने हल्की सी रुलाई दबाते हुए कहा, अखिल ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें भी मानती हूँ, तुम्हारी भी इज्जत करती हूँ, लेकिन... अखिल ने बात बीच में ही काट दी। उसकी आवाज़ तीखी थी। लेकिन क्या, तुम्हारे लिए मेरी जगह गौरव ज़्यादा अहमियत रखता है ना? तुम मेरे बच्चे को मारना चाहती हो क्या रैना? क्या तुम्हें ज़रा भी परवाह नहीं है उसकी? ये शब्द सुनते ही रैना का दिल जैसे थम गया। वो एकदम से बैठ गई और आंखें चौड़ी हो गईं। क्या अखिल, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मैं हमारे बच्चे को मारना चाहती हूँ, तुमने ये कैसे सोच लिया? उसकी आवाज़ टूट गई थी, आंसू पलकों से फिसलने लगे। अखिल ने करवट कगल ली, पीठ उसकी ओर कर ली। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। तुम समझती नहीं रैना, मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हें और बच्चे को कुछ भी ना हो, लेकिन तुम मेरी एक भी बात नहीं मानती। तुम्हें लगता है मैं पागल हो गया हूँ? शायद होंगी, तुम्हारी परवाह करते करते। रैना ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अखिल ने हाथ खींच लिया। तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, तुमने मुझे आज अकेला कर दिया है रैना। ये सुनकर रैना के दिल में एक गहरी चोट लगी। वो धीरे से लेट गई, लेकिन इस बार अखिल से उलट करवट लेकर। अब दोनों एक दूसरे से पीठ किए लेटे थे। बीच में सिर्फ एक बिस्तर नहीं, बल्कि सन्नाटे और तकरार का समंदर था। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक और उनकी भारी सांसें गूंज रही थीं। दोनों की आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन किसी ने कुछ और नहीं कहा। आखिरकार थकान और आंसुओं के बीच रात गुजर गई। सुबह, पर्दे से आती हल्की धूप ने कमरे को रोशन करना शुरू किया। रैना ने धीरे से आंखें खोली। उसने देखा अखिल पहले ही उठ चुका था। बिस्तर के पास उसकी जगह खाली थी। कमरे में उसकी खुशबू बाकी थी, लेकिन इंसान नहीं। वो बाथरूम से निकला तैयार होकर, नीली शर्ट, ब्लैक पैंट और चेहरे पर वही गंभीरता। उसने रैना की ओर देखा तक नहीं, बस अलमारी से फाइल उठाई, घड़ी पहनी और जूते पहनने लगा। रैना ने धीमी आवाज में कहा, अखिल एक मिनट रुको। अखिल ने जूते की लेस बांधते हुए पूछा, क्या है? तुम मुझे रेस्टोरेंट छोड़ दोगे ना, जैसे रोज छोड़ते हो? अखिल ने हल्की सी नज़र उसकी ओर डाली, लेकिन उसमें कोई गर्मजोशी नहीं थी। आज मैं लेट हो रहा हूँ, तुम्हें खुद जाना होगा। ये सुनते ही रैना का गला सूख गया, उसके भीतर खालीपन फैल गया। रोज वही अखिल जो उसे ड्रॉप किए बिना चैन से ऑफिस नहीं जाता था, आज उसे यूं अकेला छोड़कर जा रहा था। रैना ने कांपती आवाज में कहा, क्या मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि तुम मुझे इस तरह नज़रअंदाज कर रहे हो? अखिल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उठकर बैग कंधे पर डाला और बिना उसकी ओर देखे दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ ने पूरे घर में गूंज पैदा की। रैना उसी बिस्तर पर बैठी रह गई। आंखों में आंसू थे, दिल में हजार सवाल। क्या सच में मेरी गलती थी, या अखिल का प्याल अब शक और गुस्से में बदल गया है? उसकी हथेली अपने पेट पर आ गई। उसने हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाया, तुम्हारे लिए ही मैं सब सह रही हूँ मेरे बच्चे, बस तुम सही सलामत रहो। लेकिन भीतर ही भीतर वो टूट रही थी।